This is a News Laundry podcast, and you're listening to Reporters Without Orders.
Order, order. Welcome to Reporters Without Orders. I'm Ayush, your host for today, since Snigdha is savoring the last days of her vacations in Darjeeling, I believe. Yeah. And so you're stuck with me, for better or for worse.
She's out for Durga Puja.
Okay. Oh, yeah. And why Parikshit sitting here, poor chap? Anyway, today, as is the 84 episodes old tradition, we'll be talking about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. And to do this, we have a shining panel.
Two people shining.
Yeah, we have a shining panel.
Hindi bole to chamak bikherne wale.
Introduce to karne do yaar. The new host to log pareshan karte ho. Anyway, we have the great bandit of the information highway, Meghnath, with us.
Great bandit of the info. Okay, whatever that means.
Okay. I actually picked it from one of her comments on your Twitter, one of your tweets.
Oh really?
Yeah.
Oh, that's fun, dude. Like, you'll get so many of these then.
Yeah. Every week now we'll be.
सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विथ माई इन-लॉज.
Yeah.
And they fed me so much food that I'm still recovering.
By the way, would you like to clarify for a lot of people who, like me, once used to believe that you're Bengali?
Oh, yeah. I'm not Bengali, by the way. Yeah. Thank you. I'm not Bengali. I am Marathi.
Yeah.
In my part of the world, we celebrate Ganpati.
Yeah,
as they celebrate Durga Puja.
Yeah.
But since this was like after my wedding, it was the first Durga Puja or whatever, so it's a big deal apparently, so I had to go.
Yeah, I could tell from your stories on Instagram.
Yeah.
But anyway, you have a breaking news for us, by the way.
Yes, breaking news being that two of our podcasts have been nominated for best podcast in two different categories in the Asia Podcast Awards, right?
Yay.
Yes. And the two podcasts are Awful and Awesome, right, for the best podcast category.
Mm-hmm. Yeah.
So that's Abhinandan and Rajashree's Entertainment Weekly podcast, which is also produced by Parikshit.
Yeah.
Congrats, Parikshit. And the other podcast is Let's Talk About.
Oh, yes.
Which definitely, in the education category, has made it to the nomination list.
I think Let's Talk About is one of our underrated podcasts.
It is. It's right? Supremely well-researched stuff.
Right.
And it's a constructed podcast, so you should check that out. Apart from checking out our podcast, please do vote for these because we are right now nominated.
Yes.
And go to asiapodcastawards.com and vote for both of these podcasts. And this goes to all News Laundry lovers.
Yes, listeners, please consider doing that if you like our podcasts. And the second person we have on our panel today is our in-house Ravish Kumar. Mr. Basant Kumar. News Laundry.
मेरे लिए इसके अलावा कोई वो
introduction ही नहीं देते ना वैसे ही.
We know your obsession ना. तुम्हारे भी तो करतूते हैं जो हमें पता है.
ऐसे ऐसे गालों पे लाली आ जाती है ना रविश कुमार बोल के.
So yeah, Basant, how have you been?
मस्त, बढ़िया, सब सही चल रहा है.
आजकल क्या रिपोर्ट कर रहे हो?
आज तो मतलब अभी मैं पिछले दिनों आगरा गया था तो कश्मीरी, अगर हमारे जो लिसनर है वो अगर पढ़ना चाहे तो, जिन लोगों को कश्मीरी लड़कों को पीएसए के तहत उठाया गया है, आगरा जेल में रखा गया है, 86 है आगरा जेल में, उनके परिजन उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उसी रिपोर्ट के लिए गया था. लेकिन मेरे पास थोड़ा वक्त बच गया, दूसरे दिन छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, मैं रुक गया था, तो सोचा कुछ कर लिया जाए. तो आगरा में मेंटल अस्पताल है तो
तुम ताजमहल नहीं गए?
ताजमहल भी गया था. ताजमहल से स्टोरी थोड़ी मिल पाएगी. तो फिर मेंटल अस्पताल का मुझे ध्यान था कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पड़ता है, तो जो आगरा अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनका इंटरव्यू किया था कि भारत में मेडिकल जो मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके लिए कितने डॉक्टर हैं, तो उसको लेकर उनका इंटरव्यू आज पब्लिश होगा थोड़ी देर में.
बढ़िया.
So we'll discuss that.
काफी enterprising आदमी हमारे.
Yes, foresight.
गांधी जयंती के दिन सब छुट्टी मना रहे और ये जा रहे हैं आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में like स्टोरी करने.
But so we'll come to that since it's World Mental Health Day. But besides that, we'll also discuss things that made news and didn't make news.
Yes.
Things like the roving Rahul Gandhi, which I think now after you told me that he's back for a defamation case, the return of Rahul Gandhi.
Yeah.
We'll discuss rituals and Rafale.
Right.
We'll discuss the incendiary India Today broadcasts.
Right.
The piece that I did and the controversy the broadcast created and the morbid murders in Kerala.
Oh,
which
yeah.
Was one of the most interesting, I think, crime stories I've read in a while. Mm-hmm. So we'll come to that. But Basant, hum aap se start karte hain. So when we talk about things that made news and were big enough that you should tell our listeners about it, I think you wanted to talk about the India Today broadcasts, but it made news for the wrong reasons. So hame bataiye uske bare mein.
Haali mein, halaki apna jo desh hai, टैगोर के राष्ट्रवाद से अलग वाली कोई नई राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद गढ़ रहा है
हाँ।
तो उसी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर एक सीआरपीएफ की महिला ने कांस्टेबल ने एक डिबेट कंपटीशन में ये कह दिया कि कन्हैया के सीने में झंडा गाड़ दो। उस महिला की बात तो सामने आ गई है और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जिस तरीके की निगेटिव चीज़ें फैल रही है उस पर उसको खबर बननी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उसको खबर बनाई गई तारीफ करके, तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि गलत हुआ। वो महिला, उस महिला का भाषण तारीफ के लायक तो कतई नहीं था, आलोचना के लायक था। और दूसरा, उसमें जो और लोगों ने भाषण दिया था जिन्होंने कहा था कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हुए आतंकवाद और
आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। सो 27 सितंबर को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्गेनाइज अ डिबेट, तो उसमें डिफरेंट फोर्सेस के ग्रुप्स को, CISF, पैरामिलिट्री, CRPF, आसाम राइफल्स, and they were discussing the topic was that terrorism can be countered with considerations of human rights.
Human rights ka khayal rakhte hue aap aatankwad aur naxalwad ko kam kar sakte hain, isi vishay pe puri charcha thi.
Right.
To मुझे कई ऐसे मैंने डिबेट भाषण सुने जो डिबेटर थे उनके, उन लोगों ने पुरजोर तरीके से कहा कि सेना के लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, और कई उदाहरण उन्होंने पेश किया कि इन जगहों पे हमने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं किया और हमने वहाँ पे चीज़ें कम किया, आतंकवाद नक्सलवाद कम किया है। लेकिन इस महिला ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले टेक्स्ट उठा के, कंटेंट उठा के कविता बना दी, और अफसोस है, और आयुष की ही स्टोरी है, मुझे लगता है पढ़ने लायक है, लोगों को पढ़नी चाहिए कि किस तरीके से न्यूज़ चैनल ने उसको बेचा जबकि उसकी आलोचना करनी चाहिए।
गौरव सावंत बेसिकली यू हैव रिटन
एंड नॉट जस्ट हिम, सो इंडिया टीवी एंड जी न्यूज आल्सो ब्रॉडकास्ट द स्पीच, बट इंटरेस्टिंगली जी न्यूज एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, ही डिड दैट इन हिज डीएनए सेगमेंट, बट ही टुक आउट द वर्स्ट बिट्स ऑफ द स्पीच।
सो सिलेक्टिवली डिड
इट, सो देयर वर फाइव, इट वाज अ 5 मिनट लॉन्ग स्पीच एंड ओनली इन द लास्ट मिनट शी सेज द इंसेंडियरी थिंग्स अबाउट कन्हैया एंड वो कोके नहीं पलने देंगे जिससे अफजल गुरु निकलेगा, बट he cut that out. So there are things that even Sudhir Chaudhary considers, you know, that shouldn't be touched, but that went to India TV, that went to India Today surprisingly, and that was showed in Gaurav Sawant's show India First at 8:30, that's prime time slot. So and it was tweeted out and there was a lot of Twitter outrage over it. People were tagging, you know, the editor in chief,
you know, the thing about this and the important thing I think people were missing out on was ye debate competition tha, right? Aur ye kavita bol rahi thi aurat. Like, I mean, it was not a debate she was basically participating in, she was just trying to rile up a lot of rhetoric, and then later I think more videos came out of other people also participating in the debate and presenting pro and against views, both of them came out, I think some officers were there, and wo log reasonable tarike se bata rahe the ki kaise, either if you're speaking pro, you know, human rights, or you know, anti the topic, whatever, but all of them sounded very reasonable, but this one was pure incendiary, or you know, like they were just provocative basically.
Meghnath aur Ayush, mujhe lagta hai ki jis tarike se hamare TV channel aajkal nafrat phaila rahe hain, जनम कल परसों रफेल आया हुआ नया नया, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, तो इंडिया टीवी नहीं, न्यूज़ 18 ने एक कार्यक्रम किया, रफेल पे कार्यक्रम है, उसमें जो वक्ता है वो धार्मिक गुरु हैं, मौलाना हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ में नहीं आया कि न्यूज़ चैनल पे, मतलब रफेल पे बात करने के लिए मौलाना और हिंदू धर्म के लोगों की क्या जरूरत है।
तो हम हिंदू वाला जो आदमी है वो भी था, मैंने देखा था, वो
कल चल रहा था कि टीका चंदन हुआ तो कांग्रेस की जली ऐसे करके और सबसे हैरान करने वाली बात है, रोहित सरजना जो आज तक एंकर, उन्होंने ट्वीट किया जब लोगों ने सवाल उठाया, मजाक बना काफी राजनाथ सिंह का कि वो एक वैज्ञानिक तरीके से बनाई नई चीज़ का टीका करके स्वागत कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, गाड़ी खरीदते ही घर से पहले मंदिर में पंडित के पास जाकर चारों चक्कों के नीचे नींबू लगवाने वाले भी कई आज सेकुलर दिखने के चक्कर में राफेल की पूजा पर सवाल उठाने में जुटे हैं। इसके बाद वाला लाइन सुनिएगा, एक पत्रकार क्या ऐसा लाइन इस्तेमाल कर सकता है,
राइट,
भाई इतना दोगलापन ट्रेनिंग मिलता है या पैदाइशी होता है? एक रिंकर कह रहा है कि ये दोगलापन है, पैदाइशी है।
और बाय द वे,
डिड यू डू अ पूजा ऑफ योर बाइक व्हेन यू गॉट इट?
डिड आई डू इट? आई रिमेंबर, या माय पेरेंट्स टुक इट टू मंदिर, बट दे पुट अ टीका ऑन इट।
टीका ऑन इट,
देयर वाजंट मच बियॉन्ड दैट।
घर एक, आपके घर की खरीदी हुई सामान दूसरा है और देश के लिए खरीदा गया सामान दूसरा है।
हाँ।
तो ये इसका तो थोड़ा अंतर रखना चाहिए।
ये बहुत लाइक आई थिंक यू नो थोड़ा सा अजीब भी था, बट आई नो मुझे लग रहा है ये क्यों किया। आर वी मूविंग ऑन टू द,
यू कैन।
सो ये जो राजनाथ सिंह का जो ये था, तो आई थिंक दिस कम्स इन द व्हाट मेड न्यूज बट शुडंट हैव कैटेगरी,
राइट।
बट अगेन जैसे वो CRPF केस में हुआ था, आई थिंक इट गॉट हाईलाइटेड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, राइट। बट मुझे लगता है कि ये काफी इंटेंशनल था। उनको पता था कि इस पे आउटरेज होगा, उनको पता था कि राजनाथ सिंह चढ़ेगा, ओम निकालेगा और नींबू रखेगा टायर के नीचे, ANI फोटो खींच के लगा देगा, तो सब बस पीछे पड़ जाएंगे इसके। और वैसे हुआ एग्जैक्टली। पर उनको ये क्यों किया था उनको, उन्होंने कि उनको पता था कि बस अगर राजनाथ सिंह जाता और राफेल को हाँ डिलीवरी आ गया, यू नो वट एवर हो गया, न्यूज मर जाती। उनको ये दिखाना है कि राफेल आ रहा है, राइट। उनको ये सब कंट्रोवर्सी के बाद, यू नो वट एवर राहुल गांधी का जो भी हुआ कि स्कैम है, इतना सारा ये करके ये कर दिया, तो वहां पे जाके ये जब नौटंकी किया ना, तब अब सबको पता है कि राफेल आ रहा है,
right।
ये नींबू मिर्ची की वजह से। वही है ना कि इनका इनका काम तो हो गया, इनका काम तो ये था कि बता रहा कि हाँ हम ये स्कैम स्कैम कर रहे थे, अब राफेल आ रहा है,
right।
नींबू मिर्ची डाल के बस खत्म।
True. Yeah, that's the thing. I think if the climate was different, do you think, this is a question, if this was 2012, you know, the pre-Hindutva supposedly phase, and there was a plane that was coming and there were so many rituals, do you think it would have stirred such a controversy?
No, and then now people are sharing images of Sonia Gandhi doing puja, Rahul Gandhi doing tika, or whatever, Arvind Kejriwal in a mosque, or kuch bhi, matlab, Pakistan ke log kaise bakra kaatte hai jab weapons aata, फिर कोई इजराइल के कुछ लोग या कुछ क्रॉस लेके जा रहे हैं, पोप कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कुछ, मतलब कुछ भी बकवास इमेजेस शेयर कर रहे हैं कि अरे ये लोग जब करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे लोग करते तो प्रॉब्लम क्यों है?
मिंगना, जैसे आपने कहा कि इनको पता था न्यूज बनवाना था,
हाँ।
तो लेकिन एक और एंगल हो सकता है कि अभी महाराष्ट्र और हरियाणा दो जगह चुनाव है, और जैसे उन्होंने पूजा किया लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स, उनको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाए या ना कहा जाए, मजाक बनाना शुरू कर दिया। टीवी चैनलों ने जिस तरीके से इस पर रिपोर्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ चुनाव है, हिंदू ध्रुवीकरण किया जा रहा हो।
हाँ, हाँ, हाँ। मतलब हाँ, वो भी है ना कि
कांग्रेस को हिंदू रीति रिवाज से, पूजा से क्या दुख, ऐसे हाँ, करके जो स्लग चल रहा है,
हाँ।
तो इसी इन दो प्रदेशों में वोटर, जो हिंदू वोटर होगा वो बीजेपी की तरफ आकर्षित होगा, ऐसा भी तो हो सकता है।
ये भी एक है कि जो न्यूज चैनल्स ने जो ये जितने भी मैंने कवरेज देखा, वो यही था कि बुद्धिजीवियों और कांग्रेस के लोगों को आपत्ति है, देर लाइक देर वेरी ट्रबल्ड बाय द फैक्ट दैट हिंदू रिचुअल्स करके प्लेन को लेकर आ रहे हैं, और उस पर डिबेट करे जा रहे हैं सब लोग,
right।
और वो जो आपने बोला ना कि सो मौलाना को बुलाया इसको, उसी के लिए बुलाया था। तो राफेल पे डिबेट, मतलब वो एक्चुअली वो प्लेन पे किसी को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसी ने ओवर प्राइस कर दिया है, डिलीवरी कब आने वाला है, दो साल बाद आने वाला है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है,
और इस पे घोटाले का आरोप लगा है।
हाँ एग्जैक्टली।
अब मतलब एक मैं उदाहरण देके बात आप आयुष करेंगे, TV9 भारत वर्ष जो नया नया चैनल लॉन्च हुआ, उसने लिखा था, राफेल पर ओम का निशान, कांग्रेस क्यों परेशान। तो इस सब का मकसद वही है कि चुनाव के दौरान जो दो राज्यों में चुनाव है, हिंदू वोटरों को मोबिलाइज करो,
राइट। बट मूविंग डाउन साउथ ऑन व्हाट मेड न्यूज वाज दिस स्टोरी ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, 47-year-old वुमन कॉल्ड जॉली, हु लिव्स इन दिस विलेज कॉल्ड कूड़ा थाई इन कोड़ीकोड़े डिस्ट्रिक्ट केरला, एंड शी टर्न्स आउट was a very pious woman, you know, church attending every Sunday, but she's now a serial killer, and the story behind how she comes out to be a serial killer is just amazing. Have you guys read the story?
No, I haven't.
So isme ye tha ki recently her husband had died, so when they were doing an investigation on how he died, the autopsy report, they found out that there might have been cyanide poisoning in this. And as people got to know, other people came and told the police that it's not her, only her husband, who might have had a mysterious death. People over the years, her relatives, the husband's family, the daughter, they all have had similar kinds of death. So the police, they had their, you know,
light bulb moment.
yeah,
tube light chamki.
Okay, so the police had its tube light chamki moment, and the other five dead people they were talking about, they exhumed their dead bodies because they are Christians, so they got buried. Right. And turns out when they took out the DNA samples, I think, don't think they've proven it, but there is
traces of cyanide on them as well.
Yeah, prima facie evidence.
So she killed her own family.
Yeah, and they're saying ki this is over financial, you know, transaction, because the people she's killed, their death would result in, you know, some sort of advantage so she could corner property and money.
Amazing.
But she's also killed a six-year-old girl, which is where the psychopathic angle comes in. So New Indian Express reported that there was a news piece saying that she was planning to kill other people also because they had six-year-old daughters.
Oh God, yeah, that's horrible.
It's a and it's a sleepy little hamlet in Kozhikode, and there's a cyanide killing mass murder news report coming out of it. When was the last time we ever reported on any mass murders and serial killers?
I'm also wondering, last time serial killer koi India mein, वो एक तो स्टोन मैन मर्डर था कुछ तो भी
ये तो एक नोएडा वाला था
निठारी
But anyway, I think the most interesting bit about this Kozhikode murders is that the serial killing happened over 14 years.
14
so
years?
So it was cold, thoughtful, calculated murders.
Oh, wow.
And they were usually, you know, the husband, for example, the last death, he was poisoned. The food he had been given was laced with cyanide.
Oh, Netflix ko bhejo documentary banao.
Yeah, I think someone's going to jump on this because this is actually worth it. And she deceived everyone in different spheres of life. So she would, everyone thought she was a faculty member at a local Calicut ka jo NIT, National Institute of Technology. But they realized she would go there, but she would not teach for 14 years. This deception works, but people don't know what she was doing. That's amazing, I thought.
So this was in your what made news in the south, basically.
Yeah,
so that's no category, but you still wanted to talk about this.
No,
Ayush,
it's down south.
Yeah,
it's too fascinating.
But I think one more thing that made news but shouldn't have is this whole Rahul Gandhi Bangkok chala gaya thing.
Yeah.
Right, you know, and he actually went to Cambodia.
Ah, Surat mein hai
abhi, Surat mein hai aaj. Haan, to aaj hi pata chala ki wo Surat mein aaye ki defamation case pe. But jab wo chala gaya, so there were so many so much coverage about this fact about how Rahul Gandhi has gone on a holiday right before campaigning, how, you know, he's he's given up, abdicated it, etc. The thing is, Rahul Gandhi has given up on these things a long time ago. I think ab thoda sada hua topic bhi ho gaya hai. Like, he has said multiple times, he has told multiple people, he has said it in multiple forums, do bar resignation de diya ki mere ko nahi karna hai. But phir bhi news channels are so obsessed with him, they're like, arre chala gaya, dekho, he's not worthy. And he's like, he's saying with his own mouth that he's not worthy.
He lost two elections, he's not worthy.
Yeah, I mean, he's been saying that. I don't understand this really bizarre obsession with Rahul Gandhi anymore.
Yeah.
And now that he's back and he's in Surat aur defamation case pe, fir se piche pad gaya uske.
Yeah.
Ye news channel ka obsession nahi hai. Bharatiya Janata Party ko pata hai ki Rahul Gandhi और पाकिस्तान के अलावा उनको कोई नहीं जीता सकता
बिल्कुल.
तो बीजेपी का ऑब्सेशन है.
बट बीजेपी का ऑब्सेशन है ही एब्सोल्युटली. लाइक अभी भी मतलब कुछ भी आप इंसिडेंट लाओ,
कोई सोनिया अभी कल अमित शाह थे वहाँ हरियाणा में, उन्होंने सवाल नहीं पूछा. सोनिया गांधी बताए कि उन्होंने हरियाणा में क्या किया, राहुल गांधी बताए क्या किया, कांग्रेस बताए. राहुल गांधी को एक छवि बना दी गई कि वो उनको हम नहीं कहते, लेकिन जो लोग कहते हैं पप्पू तो एक मूर्ख की छवि बनाई गई. और उस छवि को बार बार, जैसे अभी अंजनाम कश्यप का लास्ट वीडियो जो वायरल हुआ, आदित्य ठाकरे को कह रही है शिवसेना का
सेगमेंट वेर आदित्य ठाकरे speech should be broadcasted. And her mic was on. So what we ended up hearing was that ye agla Rahul Gandhi niklega.
The
funny bit was that she apologized to Aditya Thackeray.
गडकरी से बात नहीं कर रहे थे
तो क्यों था?
वो फनवाडिस और ये थे और इन्होंने कहा कि फनवाडिस का एक बाइट चलाओ वो भी आवाज है उसमें तो जो पीसीआर वाले लड़के जो बंदा होगा उसने चला दिया ठाकरे के बयान
अच्छा
Right. और इसका माइक ऑफ नहीं किया ये वो अपने कोई होगा पास में बैठा हुआ उसे बता रही थी और हो गया वायरल
इंटरेस्टिंग चलो लेट्स मूव ऑन टू थिंग्स दैट शुड हैव मेड न्यूज बट डिड नॉट मेड न्यूज सो आई थिंक मेंटल हेल्थ इज योर थिंग एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग तुम आगरा में थे तो हमें थोड़ा बताइए आपने गए आप वहाँ पे इंटरव्यू किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू यू थिंक आई डोंट नो दिस बट English media ne recently, I think India Spend or Express say there is a wave of reporting on mental health. India Spend to pura series kar chuka hai 2016 se. Lekin Hindi jo press hai, aur usme mental health ka coverage kaise aata hai?
Hindi press aur Hindi belt. पता नहीं मतलब अंग्रेजी मीडिया मतलब जो अंग्रेजी दा लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं अगर क्लास की बात की जाए तो लोग मेंटल हेल्थ को अब एक्सेप्ट करने लगे कि मानसिक बीमारी होती है लेकिन हिंदी बेल्ट में और हिंदी बोलने समझने वालों में अभी ये भावना नहीं बन पाई है कि मेंटल हेल्थ कोई एक बीमारी है आज मैं बड़ा शर्मिंदा भी हूँ व्यक्तिगत रूप से क्योंकि पिछले 7 महीने पहले एक मेरे सीनियर की शादी होने वाली थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार वो उनकी लहमारे शादी थी और वो कथित तौर से सवर्ण जाति के थे और उनकी पत्नी दलित समुदाय से थी कथित तौर पर तो टेंशन में थे कि मेरी फैमिली और गाँव वाले मुझे हटा देंगे और शादी का डेट वोट सब फिक्स हो गया था तो डिप्रेशन में आ गए थे तो उन्होंने मुझसे कहा यार बसंत मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैंने कहा अरे चलिए ना 4 बियर पीते हैं सही हो जाएगा सब कुछ बाद में अब जब मैं उस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ जो मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं या डॉक्टर से मिल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि शराब पीने से या नशा करने से या कुछ करने से मेंटल हेल्थ कम नहीं होता तो ये चीज़ जो मैं व्यक्तिगत रूप से और अगर डेटा पे आए और इस पर आए तो भारत में 13,500 मनोरोग चिकित्सकों की ज़रूरत है
13,500
और अभी मौजूद हैं 3,827
wow, okay.
और इससे ज्यादा हैरान करने वाला अगला आंकड़ा है
मतलब 3 times ज्यादा चाहिए 3 times नहीं 4 times ज्यादा चाहिए
हाँ लगभग उससे हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि 20,250 क्लिनिकल मेंटल हेल्थ के डॉक्टर की जरूरत है आंकड़े देखिए 20,250 और भारत में मौजूद है 898
Wow, that's actually really bad. Yeah, the situation is
I read out
bad.
Something from India Spend. Huh. It says, I quote, nearly 10 to 20 million or 1 to 2% of the population, Indians suffer from severe mental disorders such as schizophrenia and bipolar disorder. And nearly 50 million, which is 5%, suffer from common mental disorders like depression and anxiety at the end of 2005.
Oh.
Health and Family Welfare Minister Nadda, at the time, had told Lok Sabha. And this was also, he was quoting from the National Commission on Macroeconomics and Health. But the last report that came is 2005. So 14 years of deficit information we have.
And this is like how much percentage of population would
so
that
if you
be?
Combine both these, 8%.
8% of population.
Serious and, you know, elementary problems.
Yeah. And that's a tragic thing is that, you know, I don't know, but like surveys like these are extremely important to find out not just the mental health of like the population, overall population, but you know, like for instance, in Bhutan, there is a happiness index, right? Where they basically have to go the other, they're trying to go the other way where they're saying that not only are our citizens healthy, they're also happy. Right, you know, like they're satisfied with wherever they're living, standard of living, education, everything, opportunities, etc. So unless you have like data like this, or what Basant said, unless you have data plus the doctors to handle these cases, it's just absolute worthless to basically even expect anything really, right?
Also, the important bit is that on the social level at the grassroots, what is your society's perception of mental
That's
health?
That's also true.
That would determine policy, right? I mean, in any country would expect grassroots feelings to change into policy.
Uh-huh.
But in Indian households, in middle class or in rural India also, a lot of people who have disorders are seen as people who do not belong in the normal society.
Right.
That's, and you know, that's why you have
asylums.
And
these are all visible disorders,
exactly.
Right? I mean, the visible,
exactly.
Visibly, say, slow or visibly,
right.
Like, you know, non-functioning individuals which have to be kept in, say, a mental hospital or whatever.
Right.
But there are obviously things like depression, anxiety, and like, unseen real mental disorders which people go through and उसका अवेयरनेस तो और ही लेवल पे
राइट राइट राइट
जब मैं आगरा जो मेंटल अस्पताल है मुझे लगता है शायद भारत का सबसे बड़ा मेंटल अस्पताल है वहाँ 550 मरीज भर्ती हैं जिनका कंटिन्यू इलाज चल रहा होता है और रोजाना 300 लोग ओपीडी में आते हैं तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया कि यूरोप है या अमेरिका है वहाँ पे एक डॉक्टर रोजाना 4 से 5 मरीज देखता है और हर मरीज को कम से कम 20 मिनट से 50 मिनट देना है आपको उससे कम देने पे आप पे कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये मेंटल हेल्थ ऐसा होता है कि जो व्यक्ति गुजर रहा होता है वो किसी दुख से गुजर रहा होता है किसी अपने से धोखा मिला हो कोई डर उसके मन में पैदा हो तो जब तक आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़ेंगे नहीं तब तक वो अपनी बात आपको नहीं बताएगा लेकिन भारत में जो डॉक्टर हैं जो आगरा अस्पताल में डॉक्टर हैं दिन भर में 40 से 50 मरीज देखते हैं अब सोचिए वहाँ 4 से 5 और भारत में 40 से 50 तो जो उनका सही होने का औसत होगा वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा एक तो आप मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो एक अलग उसका असर होता है कि वो किस तरीके से बात करेगा और दूसरा नंबर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाएंगे आप तो ज़रूरत है भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर कई सारे कार्यक्रम चला रही है लेकिन जितने ज़्यादा डॉक्टर पैदा होंगे डॉक्टर अब प्राइवेट में क्या होता है एक मीटिंग के 2,000-1,500 रुपये लेते हैं एक मिडिल क्लास का आदमी या लोअर मिडिल क्लास का आदमी कैसे पे करेगा 2,000 रुपये एक मीटिंग के मान लीजिए कि महीने में अगर 3 भी मीटिंग हुई तो 10,000 रुपये तो इसी के चले गए आपके
राइट
कि आप जा रहे हैं उससे सलाह ले रहे हैं वो आपको ज्ञान देगा तो आदमी इग्नोर कर देता है तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट लेवल पे सुविधाएँ दी जाए क्योंकि मेंटल हेल्थ एक व्यक्ति को होता है उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है ये ऐसी एक बीमारी है
एक और आई थिंक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैज दिस हेल्पलाइन लाइक 24-hour लाइक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन विच ऑफर्स लाइक फ्री काउंसलिंग एंड थेरेपी फॉर पीपल ओवर द फोन एंड अनोनिमसली नाउ दे हैव एन ऐप एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स सो आई थिंक द अवेयरनेस इज स्लोली बिल्डिंग बट आई genuinely think we need more to be done have you guys seen this movie called Kumbhalangi Nights
no but I got an Indian Express invite for it I should have gone
it's a very nice movie
yeah.
it's on Amazon so wahan pe ek bahut interesting cheez dikhai hai ki it's this story about this very small town family from Kerala which is like obviously like has like the normal problems and you know whatever and are extremely poor and I was very surprised because there's this scene and I won't spoil it but one person goes through depression because someone dies right and this guy the next scene they show is that he can't cry he can't express himself basically he's like completely depressed right and then they show how he himself goes to a therapist in Kerala and then they show him like through this whole sequence of him talking and then he's asking you know and then they show him like crying like crazy right and then he comes out all like relieved and you know whatever so
yeah.
I mean I think through the movie what they were trying to show was that maybe I don't know I'm basing this on a movie but what was surprising to me was that in this rural town in rural village in Kerala with a very poor family the first thing the person thinks about is going to a therapist right and I think if more movies and more pop culture is on grassroots level of mental health awareness right like if say for instance in a movie Salman Khan loses his dad or whatever and then he goes to a therapist instead of taking fucking revenge he goes to
absolutely,
a therapist
absolutely
I mean, like
yeah
why not
yeah before you murder someone why don't you just go you know
yeah.
meet a psychiatrist yeah. a therapist anyway by the way I think one of the least talked about constituencies of mental health in India is the my generation people who are in their 20s and because when I was in 2016 I was interning at a place and I prepared a policy brief of students and mental health in India and I realized that a lot of schools offer counseling and a lot of colleges offer counseling they have an in-house counselor my school had an in-house
okay.
counselor by the way but these counselors are of no help they end up being are career counselors
right
so you go to them and you can only talk about which subjects you like, what you should pursue. Hmm. So they are not counselors in the way people understand them to be, that they don't help you with therapy or with your problems or you with insecurities.
Right.
And there are helpline numbers which CBSC has given. You call them, no one picks up, by the way.
Okay.
And again, this is a provision of the government has recommended that you should have counselors.
Right.
But a lot of these things don't make it to the end. And I think our generation, I also feel that because we are in generation in transition, is that our parents are, you know, might be rooted very much in, from especially like me, from a middle class family, but we are hanging out with people who might not be that rooted, you know, rootless cosmopolitans. Swapanas Gupta says. So that causes a lot of crisis, confusions in itself.
Mm.
Because India's society is changing and that produces a lot of mental problems.
That's true.
So I think that is something that should be reported on if at all media.
What is your story which was...
I think what was not discussed enough was a very fascinating case. In UK this happened, was that India and Pakistan were fighting over 35 million euros for the last 70 years. This is since independence. The story is that 1948 May, after Hyderabad was secured by the Indian Union and there were police forces sent, just after the Hyderabad state surrendered, the Nizam who surrendered, he transferred 1 million euros to the account of the Pakistani High Commissioner in England. And nothing happened to that money, actually, because he'd surrendered. But in 1954, India thought that it'll sue for this. So 54 May, and Nizam is also like, haan, mereko wapas chahiye paisa apna. So he, India and the Nizam, they go to, you know, the British High Court. Pakistan is also brought in, but Britain says Pakistan is a country and it has a sovereign immunity, so you can't sue Pakistan. So that whole thing just was stalled for 60 years.
Okay.
In 2008, Musharraf's government falls, a democratic government comes in Pakistan, and they said, okay, we'll actually screw the sovereign immunity, we'll fight this case because we want this money.
Okay.
And I realized, I was reading the Indian Express explainer on this, that India doesn't have much interest in this money, by the way. So he transferred 1 million euros then, now it's 35 million euros. Calculate karo.
Hindi mein matlab rupees mein matlab
itna aa jayega ki har aadmi ko 15 lakh rupees mil jaye.
So that's 280 crores in rupees.
To itne mein sabke account mein 15 lakh aa sakta hai? 15,000 to ahi jayega. 15,000.
280 kuch bhi matlab 280 crore kuch nahi hai.
Matlab 125 crore Indians. So they're 2 rupees, 2.5 rupees every account.
Are fir
chhodo. So yeah, after the democratic government comes back in power in Pakistan 2008, they open this, then it shuts down again, then they open this again in 2013, and finally what happens midway is that the Nizam and India come together, the Nizam's descendant, that is. And they fight a case together, and now there was almost an out of court settlement that got screwed, but finally they've ruled in our favor.
Oh, saying our, that matlab the Nizam's favor.
Nizam's favor.
We are not getting any money. The Nizam is.
Yeah, but it's coming in our, you know.
FDI.
If there's a demonetization, it will become our money. So, anyway, so that was a very interesting story, and that should have, I think only Express did a very detailed explainer on it.
Yeah.
But yeah, what's yours?
My story is this news that came out that SBI has written out around 76,000 crore money of 220 defaulters.
Wow.
And RBI has, RTI has revealed this, which takes the number of total write-offs till now to some 2.75 lakh crore. In total, right? And it's a ridiculous amount, and I'll tell you why.
Mm.
It's because in 2018, our total NPAs was around 9 lakh crore, which means that one third of it has already been written off. And these are all big ticket loans, which are like over 500 crore and over 100 crore. So according to this report, what it says is that SBI has declared that unrecoverable outstanding amount is 37,700 crore of 33 borrowers with loans of 500 crore and more. So the average loans that have been basically written off, the average amount that has been written off per loan is 348 crore.
Wow.
So just imagine like how messed up this whole thing is, where, you know, banks are basically just writing off all these loans and just letting go of like 500 crore or like 300 crore or 200
crore. So when the loans are written off, what usually happens is that the bank which writes it off considers that this amount of money is irrecoverable.
It's not coming
back. Whatever happens, this is not coming to us.
It's not coming back, yeah.
So in the light of that and in the light of the whole recapitalization business that happened in light of the PMC scam, do you think the state of our banks says something about the state of our economy or state of our governance?
So the problem is, and I have written and spoken about this multiple times, is that when Raghuram Rajan came in and in 2014 when the new government was there, I think in the 2014 end is when he ordered all banks across the country to declare NPS. Because what banks were doing was that they were cleverly hiding those loans and not declaring that they are like the people who have taken the loans are in trouble or the due diligence was not done when, you know, the loans were given, etc. So since then till last year, the number of like NPAs like shot up from some 2.5 lakh crore to 9 lakh crore.
Wow.
Right. And so the bank started declaring more and more NPAs forcefully. And now the problem is that if you have declared so much NPAs, which means we have so much debt, which is not getting recovered. And a lot of it is in like PSBs, which is the state-owned banks. So, fir kare kya? So, fir the only way out of this is either, you know, they passed a law which makes recovery easy and bankruptcy, declaring bankruptcy easy, so that they could like get some of the money back. But that process is underway. But till then, these banks have to basically also figure out how to sustain these losses. So, what happened is because of this whole chain of events, now banks stop giving out loans because they are also scared that their officers will get screwed because of previous loans. So how will they give new loans? So credit stopped. So then people stopped, then industries stopped taking loans. Then, you know, the cycle just continued. Now we have come to a point where people don't want loans anymore.
Right.
People are like, what are we going to do with this? Like, we can't pay back. We're in a situation where we can't pay back. So this was a news that I think should be more highlighted.
Right.
And it just wasn't.
तुम्हारे हिंदी मीडिया वाले तो ये सब बताते ही नहीं है.
रवि कुमार ने बताया होगा ना तुम्हारे.
वो कॉपी ट्रांसलेट करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड और तमाम चीजों को.
चलो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट.
या
things that made news and absolutely shouldn't have. I found, I'll just wrap up mine.
Right.
This is very funny. So, you know, Hardik Pandya, right, the wonderful cricketer. Main abhi karke aayla types. It was Zaheer Khan's birthday.
Maine bhi padha.
He tweeted a video of him smashing Zaheer Khan for a six from some local, you know, country cricket type scene. And he said, you know, hey Zach, happy birthday. Remember when I smashed you out of the park? And people were like, what the fuck? This is disrespectful. But Zaheer Khan took it in stride. He said, yeah, you know, thanks for your birthday. I'm not as good as you when it comes to batting. But don't forget what I did to you on the very next ball, you know? Uh-huh. So like, oh, wow. And I was curious, what is this that he did in the next ball? Uh-huh. You know, did he बॉडीलाइन मारा उसको कहीं छाती पे सर फोड़ा वो या उसको आउट किया वो क्या किया यॉर्कर डाला सो आई ट्राइड लुकिंग फॉर इट एंड ऑल दीज मीडिया हाउसेस Express, Hindustan Times, all of them reported, here is Zaheer Khan's epic reply to Hardik Pandya's arrogant tweet. All of them. And none of them mentioned what happened in the next ball.
You find out what happened in
there? No, I don't. No one knows. See, they are journalists. I'm sure if they didn't find out, I would. But hope do I have.
Wow.
So no one knows what happened in the next ball, but everyone's replying, what? Oh, great epic reply. You check out what Zaheer Khan said to Hardik Pandya.
And that's all he said. Ki next ball mein kya kiya tha, woh to dekh le
the
dives.
Then all the articles will go to highlighting, oh, he's played these many matches, he's taken that many wickets. I'm sure that's great. But at least tell us what he did in the next ball. So it was very ridiculous, very clickbait. That was absolute clickbait. Shouldn't have been reported. But as we stand at this moment in our history.
My pick for this is basically Congress Dasera Dhoka, which Times Now had that hashtag. But it was mainly about this story that has been doing the rounds from Balrampur, where a Muslim mob basically threw stones at a passing Durga Puja procession. And then our friends, you know, OP India.
Yeah, yeah.
Your friends, actually.
Yeah, wonderful.
Good friends.
Good
yeah.
friends. And, you know, like a few, of yeah. course, Times Now types, they basically picked it up and said that this was a preemptive attack. Basically, they're waiting for them to pass so that they can pelt them with stones, etc.
Right.
And then the thing is that they went crazy with this story. Right. And then later the UP police came out and said that, listen, this was not a preemptive attack. And the people who were doing this have been promptly arrested.
Okay.
They threw a few stones. Sure.
Yeah.
Nobody was hurt. Hey. But like, you know, we've picked them up and right. everything is calm. Please don't make this worse.
Right.
And when doing so, he actually quote tweeted a journalist from OP India.
Oh, there's a journalist in OP India.
Thanks.
Okay.
Are your friend Swati. Goyal.
Okay. Well, she's in Swarajya.
Swarajya.
Yeah, yeah. But lines are blurred.
Yeah, lines are blurred, yeah.
yeah.
So, but look, the thing is that if it comes to a point where, you know, this, the police handle from UP has to quote tweet this person and say that, acha, listen, no, that it was not preemptive. It was nothing, you know, that way. And they have put out a video of this guy saying it to her also.
Yeah.
Maybe they were thinking ki ye to padhne wali lagti nahi hai, to fir usko bol ke bhi dikha denge. So, wahan pe ek police officer ka उसने वीडियो निकाल के भेजा है उसको एंड इसका इतना बड़ा बतंगड़ बनाया है इन लोगों ने टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया इधर उधर फिर उन्होंने दो तीन कहीं से और से इंसिडेंट्स लेके आए और बताया भी नहीं कौन से इंसिडेंट्स है एक्चुअली
right.
ये एक इंसिडेंट तो बताया फिर ऑब्वियसली रंगनाथन टाइप्स आ गए वहां पे और उन्होंने एक्सेल शीट निकाली अपनी
right.
और चालू हो गए वहां पे
right.
तो ये जो इंसिडेंट है आई जेन्युइनली फील कि उसका बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा यू नो इसको
एंड यू नो
इफ यू ये नहीं करना
इफ यू रीड द ऑप इंडिया रिपोर्ट आई डोंट नो इफ स्वराज रिपोर्टेड ऑन दिस बट लॉट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर रिटन दे यूजुअली कॉल द ऑफिसर एंड दे टॉक टू देम एंड देन दे राइट दिस रिपोर्ट व्हिच इज फाइन बट आई डोंट थिंक यू शुड बी असर्टिंग टू एन एक्सटेंट ऑफ व्हाट actually happened
yeah.
preemptive and everything
right.
until you go to the ground
right.
I mean that is the ABC your
yeah.
dal bhat
right,
you know
right,
journalism
right, right.
tum ground pe jao tum dekho if it turns out it was pre-planned then you report might
yeah.
as well
hmm.
but the way it's reported and the way it's spread and this happened yesterday or whatever whenever
hmm.
it happened the video surfaced yesterday and yesterday it went viral
hmm.
and in that time yaar isme kya reporting hui hogi ab ye popular ho gaya hai ab newspapers apne reporters hmm. bhejenge you know people will go now we after this whole scene this whole ugly thing just calms
and,
down
and you know
we'll find out what actually happened
but one more thing is I mean I should give complete credit to the UP police here as well where they promptly gave out that response but also the fact that they dealt with this like they basically arrested the people responsible
right.
they made sure that the area remains calm they made sure that no untoward incident happens after this
yeah.
I mean they launched an investigation or whatever but the fact that they did this needs to be highlighted
right
main do baatein kehna cha raha tha ek to ayush abhi op india se ummeed kar rahe the आप उम्मीद भी उसे करते हैं जो लायक हो जब ऑफ इंडिया का विज्ञापन निकलता है नौकरी के लिए तो उसमें लिखा होता है कि वैचारिक स्तर पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा
Which means?
हाँ मतलब जो आपका वैचारिक क्या बोलते हैं
आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी के लेवल पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा आपको राष्ट्रवादी होना ही पड़ेगा
It says that you have to be राष्ट्रवादी
उसके हिंदी में तो बाकायदा लिख के रखते हैं कि इससे कोई समझौता नहीं होगा उन्होंने गंगा पे एक स्टोरी किया था मेरा ही जानने वाला लड़का था हालांकि बाद में छोड़ के उसने खुद फेसबुक पे लिखा कि किस तरीके से जहां गंगा गंदी थी वहां भी उससे ही लिखवाया जा रहा था तो जो ऑप इंडिया के सीईओ हैं उन्होंने उसको मेल किया कि हम तुम पे कार्रवाई करेंगे कानूनी नहीं तो माफ़ी मांग लो तो उसने कहा सर मैं माफ़ी नहीं मांग सकता मैं अपने बात पे अडिग हूँ
सीईओ इज़ राहुल रोशन
हाँ राहुल रोशन तो और दूसरी बात आप कह रहे थे यूपी पुलिस की तारीफ कर रहे थे कोई तो तारीफ कर रहा है हालांकि यूपी पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है बहुत हद तक तारीफ के लायक नहीं है
वो तो सही है मतलब वो दोनों साइड्स हैं
पत्रकारों के मामले पे हमने देखा अभी हालांकि हम ग्राउंड पे नहीं गए लेकिन अभी एक झांसी में एक व्यक्ति के इनकाउंटर का आरोप लगा है यूपी पुलिस पे कि पुष्पेंद्र यादव नाम है जो 25 ईयर का एक 25 साल का एक व्यक्ति था उसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया हम ग्राउंड पे नहीं गए तो हम एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता पाएंगे लोग जो खबरें आ रही है कि कुछ लेन देन में ऊपर नीचे हुआ था उस वजह से उसको मारा गया और जो उसका अंतिम संस्कार हुआ वो पुलिस खुद करा दी परिजन आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, पुलिस ने खुद करवा दिया। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उस परिवार से मिलने गए थे तो बीजेपी ने आरोप लगा दिया। वो पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर हुआ है तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि जातिवाद फैला रहे हैं यादव को यादव। तो यूपी पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है अभी वो बड़ा मतलब शर्मिंदगी वाली बात है और निंदनीय है।
मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये रहा है कि आई एक्चुअली रियलाइज इन कम्युनल मैटर्स दे एक्चुअली डू गुड थिंग्स। फॉर एग्जांपल जो मैं अलीगढ़ में रिपोर्ट किया था जिसमें 2-year-old गर्ल वाज मर्डर्ड एंड द पीपल हु मर्डर्ड हैपेंड टू बी मुस्लिम सो इट वाज सोल्ड अगेन बाय द सेम पीपल ऑन द इंटरनेट एंड वहां पे मॉब्स पहुंच गई थी। द व्हाट्सएप सर्कुलेशंस एंड पीपल फ्रॉम द विलेजेस हैड कम पोरिंग इन एंड हैड इंटरव्यूड पीपल हु सेड दैट वी विल किल यू नो वी नो नथिंग बट मर्डर। उसमें आई हैव रिमेंबर अपलोडिंग द वीडियो जिसमें द पुलिस ऑफिसर स्टूड इन द सेंटर ऑफ द मॉब एंड ही सेड कि काम डाउन डोंट डू एनीथिंग व्हिच यू विल रिग्रेट एंड दैट सो देयर आर पीपल कमेंडेबल पीपल ही वाज ऑफ कोर्स ट्रांसफर्ड 2 डेज लेटर बट एंड ऑप इंडिया आई मीन देयर इज नो डाउट। यहां पे गुड़गांव में हेट क्राइम हुआ था जब एक लड़के की यू नो स्कल कैप गिरा दिया था रिपोर्ट में आया था तो उसमें दे हैड रिपोर्टेड दैट द पुलिस हैज डिनाइड दैट देयर इज नो देयर इज अ हेट एंगल इन दिस एंड आई वेंट एंड मेट द ऑफिसर एंड ही सेड नो देयर इज वी हैवंट डिनाइड एनीथिंग सो दिस इज प्लेन फॉल्सहुड
एंड यू नो द थिंग इज लाइक आई थिंक वन थिंग पीपल ऑफन से एंड आई थिंक जब भी ये ऑप इंडिया टाइप यू नो कुछ भी करते हैं तो अरे क्यों ध्यान देते वो थोड़ी जर्नलिज्म करते हैं बट द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ओपी इंडिया ने पहले रिपोर्ट किया और फिर ये सब चैनल्स ने पिकअप किया न्यूज़ चैनल्स ने टाइम्स नाउ ने पिकअप किया उसका बतंगड़ बनाया रिपब्लिक ने पिकअप किया बतंगड़ बनाया आज तक में भी एक शो किया था उन्होंने तो हिंदी से लेके इंग्लिश मीडिया तक ये एक सोर्स यूज करके वो रिपोर्ट कर रहे हैं ऊपर से अपोलोजिस्ट लेके आ रहे हैं कि जो यू नो निकालेंगे और फिर बताएंगे कि ये इंसिडेंट तो वही है पर ये लो और 10 इंसिडेंट्स जहां पे तो इन्होंने कुछ नहीं किया टाइप्स
एंड
एक बार जानेंगे कि ऑप इंडिया हिंदी का जो एडिटर है उसके फेसबुक पेज पे जाएंगे तो उसने अपने पूरे करियर में अब तक का करियर है जानने वाला है मतलब मैं जानता हूँ रवीश को गाली देने के अलावा और एक किताब उन्होंने लिखी है हिंदी युग से प्रकाशित है उनको एबीपी न्यूज अपने यहाँ विशेषज्ञ के तौर पे बुला रहा है ऑप इंडिया हिंदी के एडिटर को
हाँ वन ऑफ द ब्लॉगर्स ऑप इंडियाज ब्लॉगर्स नूपुर शी केम ऑन रिपब्लिक
राइट राइट शी डिड
सो या दैट
बट शी इज द एडिटर आल्सो आई थिंक
बट व्हाटएवर शी इज द ब्लॉगर
बट या बट माय पॉइंट इज दैट यू नो पीपल आर वेरी डिसमिसिव ऑफ दीज एलिमेंट्स इन दिस पब्लिकेशन एंड इवन द what they do on Twitter etc right. but the fact that they are the mainstream now they have become the mainstream
right
and there is a whole ecosystem which they have built over the last 5 years which makes them the mainstream
right.
which is worrying right. like one spark like this is enough to get them like all riled up and get like a whole host of population also riled up okay. through their various mediums
yeah. chalo on that very optimistic note we'll wrap up our podcast for today and hopefully my last stint as the host Just kidding, Parikshit. But before we wrap up, guys, your recommendations, Meghnath?
My recommendation, okay, so I've started rewatching The West Wing. Okay, do you know The West Wing?
West Wing? Oh no, I thought Westworld.
No, West Wing. So, ek purana show hai. It was launched in 1999, written by Aaron Sorkin, about basically the president of America and his staff. Right. So I wanted to. It's very funny. I was watching this yesterday, and in the first season, I think the 8th to 10th episode is about the Indian Kashmir conflict. Right. Oh. And this was in 1999. Right. And it's so reductive. It's funny to a large extent, where they're also showing the map, which is wrong, like literally wrong. They're spelling Jammu as J-A-M-U, and it's above like some random place in Pakistan. But the point is that it's so funny because the whole episode for three episodes, the whole show is based on how the American intelligence is so bad that they couldn't notice a troop movement of 30 lakh soldiers from one point A to point B and starting a war with Kashmir.
Wow.
And how both the countries were like, we don't know, we are going to bomb each other basically. So it's really nice. But my recommendation is, of course, the show, but also a podcast called the West Wing Podcast, West Wing Weekly, where these guys, one of them is an actor in the show. They are rewatching the show.
Okay.
And every week they are giving a commentary on one episode each. So you have to watch it with them and then listen to the podcast. So please
Excellent.
Look at it. It's amazing. I think it's the one of my favorite all time
it sounds
shows.
Like a package the yeah, podcast yeah, yeah. बसंत
हम लगातार बातचीत कर रहे हैं जो हमारी मीडिया है वो किस तरीके से नफरत फैला रही है तो हिंदी न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पे हाल ही में आईएमसी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं डॉक्टर आनंद प्रधान उन्होंने दो पार्ट में सीरीज लिखी है पहला ये है खुशबू चौहान के बहाने खुशबू चौहान वही महिला सीआरपीएफ वाली जो हेट स्पीच दी थी जिसको वायरल किया गया और दूसरा है नफरत फैलाने में लगे न्यूज चैनलों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा इसमें रेडियो रवांडा जो घटना हुई थी नरसंहार हुआ था और जर्मनी में जिस तरीके से मीडिया ने एक माहौल तैयार किया था यहूदियों के खिलाफ तो उन तमाम उदाहरणों के साथ ये बताया गया कि हमारे यहाँ की मीडिया किस तरीके से एक खास समुदाय के प्रति नफरत का माहौल पैदा कर रही है और उससे कितना नुकसान हो सकता है समाज तो बट ही रहा है
राइट
उसका भविष्य में कितना हम मान लो जैसे रेडियो रवांडा में 10,00,000 लोग मारे गए थे रवांडा है ना रवांडा शहर में तो इंडिया में भी अगर जिस तरीके से माहौल बन रहा है तो स्थितियाँ गड़बड़ हो सकती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोग जो हमारे दर्शक हैं रीडर हैं जो भी हैं वो इन दो आर्टिकल्स को पढ़ें और चैनल न्यूज़ देखते वक्त ये ख्याल रखें कि मैं देख क्या रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ आपके विचार बनाते हैं आपकी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इन्फॉर्मेशन से आपका विचार बनता है विचार नफरती बनेगा तो आपका पूरा परिवार प्रभावित होगा आप खुद तो होंगे ही
चलो माय रिकमेंडेशन डियर लिसनर्स इज दिस पॉडकास्ट अगेन कॉल्ड What does the Mueller report actually say? It's been a while since the Mueller report came out. It was investigating allegations of conspiracy and collusion with the current administration and the Russian government in the run-up to the 2016 election. But I remember a lot of reports that came out in NYT and Washington Post. I was confused. Ki ho kya raha hai? Kya bola kya hai is report ne? Wo 400 page ka report kaun padhe? So this podcast with it's called Making Sense with Sam Harris. In the episode, the guest is Benjamin Witz. He's a legal journalist. He explains, breaks down what the Mueller report says and what the president and his team did and did not do. It's very interesting, very lucid, very simple. So please give it a shot. And of course, listeners, don't forget, if you like this podcast, if you hate this podcast, please feel free to let us know any of that. We welcome your bouquets. We welcome your brickbats. You can write to us at contact@newslaundry.com. You can even mail us. Meghnath is available at meghnath@newslaundry.com. Basant@basant and I at Ayush. So you can email all of us.
Aur agar aapko ye podcast pasand aaye, to apne doston, rishtedaron aur apne janne walon tak pahunchayein taki achhi cheezein लोगों तक पहुंचे और वो लोग हमें सुझाव देता है कि हम इसको और बेहतर कर सकें
एंड एज ऑलवेज पे टू कीप न्यूज फ्री गाइज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री बिकॉज यू आर द पावर हाउस दैट पावर्स अस एंड वी आर एबल टू गेट मनी बिकॉज ऑफ यू इफ यू एवर पे सो प्लीज पे
अब वो दिन आ रहे हैं जब गेस्ट भी पैसा मांगेंगे यहाँ पे आने के लिए सो इफ यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू टॉलरेट मेघनाथ बसंत एंड आई वांट समवन एल्स Please subscribe
to News Laundry.
Yes.
Also, one more thing we would like to say is that now we are actually trying to take our podcast to the next level. So if you are a subscriber of News Laundry and you are listening to this podcast, then please write to us. And what we can do is we will actually make you a part of this panel. Please tell us what you have read in the news last week and what you want to talk about. And we will invite you to be a part of this podcast either over Skype or call, etc. So you don't have to fly all the way down from the US or wherever. But please write to us if you're interested in chilling with us and hanging out with us and discussing the news of last week.
Yeah, that sounds fun.
Yeah.
But with that, podcast adjourned.
All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes, and any other podcast platform.
Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs, and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. And subscribe to our YouTube channel.